मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को, दूसरे समाचारों को देख लेते हैं। एक अखबार में मुझे यह खबर मिली है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह खबर बिल्कुल सही होगी, क्योंकि फ्रंट पेज न्यूज़ है और सामान्यतः किसी अखबार की अगर फ्रंट पेज न्यूज़ हो तो बहुत विश्वसनीय मानी जाती है। और न्यूज़ यह है दोस्तों कि जो हमारा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक बहुत अच्छी घोषणा की, बहुत ही व्यावहारिक घोषणा की। उसने कहा कि अब 7 अगस्त को यह जो फेडरेशन है, हर 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे मनाएगा, जैवलिन भाला फेंक दिवस मनाएगा। और 7 अगस्त को क्यों मनाने का फैसला किया गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे नीरज चोपड़ा ने इसी दिन भारत को सोना दिलवाया था। एक सामान्य सी खबर है, लेकिन मैंने इसे यहां क्यों लिया है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो खेल का परिदृश्य है फिलहाल भारत में बहुत अभी उत्साहित है और इसको लेकर के आपकी ठीक ठाक तैयारी होनी ही चाहिए। तो अब आप देखिए कि जब आप खेल का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे देश में, तो बनता कैसे है? ऐसे बनता है जो अभी फेडरेशन ने एक कदम उठाया है कि उन्होंने जिस दिन गोल्ड मेडल जीता उसको उनके इस सफलता के पर्याय के रूप में डे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डेफिनेटली इससे लोगों में आकर्षण बढ़ता है। आप यूं कह लीजिए कि अंदर की ऊर्जा सकबकाने लगती है, जागने लगती है और फिर वो प्रज्वलित होकर उठ जाती है। इस तरीके से आप इस न्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, आप किस विभाग, किस मंत्रालय के मंत्री हैं आप शायद जानते होंगे, चलिए यहां जानना जरूरी भी नहीं है। तो उन्होंने अभी एक बात कही है और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने देखिए क्या कहा है कि सरकार ने बकायदे ये स्वीकार किया है कि जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें अमेजन वगैरह का नाम आता है ना, इनके चलते जो हमारे छोटे और जो खुदरा व्यापारी हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है, इसे जानती है और बकायदे पार्लियामेंट में इसे स्वीकार भी किया गया है। यानी कि यूं कह लीजिए कि उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि इससे हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं वो कितने बड़े संकट में हैं और इनकी जो संख्या है उन्होंने सामान्यतः जो बताई है करीब 6 करोड़ छोटे खुदरा व्यापारी, याद रखिए छोटे खुदरा व्यापारी 6 करोड़ लोग, और इन 6 करोड़ लोगों के यहाँ लगभग 12-13 करोड़ लोग काम करते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति के यहाँ, एक व्यापारी के यहाँ 2 लोग लगे हुए होंगे, अगर देखिए 2 भाई भी लगे हुए हों तो 2 लोग हो गए। और सोच करके देखिए कि अगर ये इतने लोग लगे हुए हैं, 6 करोड़ लोग हम इससे जुड़े हुए कह लेते हैं, तो अगर एक व्यक्ति 5 लोगों का भरण पोषण करता है तो 30 करोड़ लोगों की जीविका इससे जुड़ी हुई है। तो इस पर बकायदे मंत्री महोदय ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारे छोटे खुदरा व्यापारी हैं इनके हित सुरक्षित रह सकें। फ्रेंड्स, बकायदे सरकार ने देखी कि क्या बात कही है, वो ये है कि धीरे धीरे ई कॉमर्स कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब उपभोक्ताओं को मजबूर होकर इनका सामान अधिक कीमत पर खरीदना पड़ेगा। आपको इनकी जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है वो बहुत विचित्र सी लगेगी। मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, नहीं मैं बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको बताता कि ये किस तरीके से व्यापार करते हैं। जोमेटो का नाम आपने सुना है, सुना क्या है, आप उसका उपयोग ही कर रहे होंगे। अभी इसका IPO भी आया और आप देखिए कि जब शेयर के रेट खुले तो कितने हाई रेट पर शेयर के बिकने लगे, ठीक है। अभी जो जोमेटो है, इसी ने कल ये घोषणा की है कि एक तिमाही में उसे 356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक तिमाही में। इसको अगर 4 से गुणा कर दे तो साल भर का नुकसान होगा, लेकिन उस तरह से हमें करना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एक कंपनी को इतना नुकसान होता है और उसके शेयर्स इतने हाई रेट में बिकते हैं, ये करते क्या है? आप कभी जोमेटो से खाना मंगा करके देखिए, पता लगेगा कि एक आपने भोजन की जो थाली मंगाई है वो होटल में आप जाइए खाइए तो 200 रुपए में मिलेंगे, और ये जो जोमेटो वाला है वो आपके यहाँ 180 रुपए 75 रुपए जो भी है में पहुंचा करके आपको दे देगा, यानी कि आप कह लीजिए 10% 15% कम में दे रहा है। ये क्या तमाशा है? दोस्तों, ये बहुत विचित्र किस्म का एक विशेष सर्किल सा है जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को आप यूं कह लीजिए कि अपनी चंगुल में लेने की कोशिश की जा रही है और आगे चल करके उसका लाभ उठाया जाएगा, इस ओर ही हमारे मंत्री ने इशारा किया है। और इसको लेकर के वाकई में जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं वो बहुत त्रस्त हैं। ई कॉमर्स पर जब कोई कानून लाने की बात आती है तो आप देखिए कि कैसे उस पर फिर बवाल मच जाता है। और दोस्तों, आपको इस घटना पर, इससे संबंधित समाचार पर बकायदे अपनी निगाह बनाए रखनी है। फ्रेंड्स, आज अखबारों के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही जबरदस्त खबर है, और खबर खासकर इसका आधार ये है कि अभी जो न्यायालय है, हमारे जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे अभी कुछ राजनीतिक पार्टियों पर, आप यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खासकर बिहार में जो चुनाव हुए थे उस दौरान वहां जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उन्हें अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है, उसके बारे में बकायदे निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जब उन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी तो 8 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया। ये एक सामान्य सी घटना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, मैं उन्हीं के शब्द आपके सामने रख रहा हूं और आपको चाहिए कि आप इसे नोट भी कर लें। राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, यही है कि चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद या तो राज्य के विधानसभा में पहुंचेंगे, विधानमंडल में कह लीजिए, या संसद में पहुंचेंगे, और फिर यही कानून बनाएंगे या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, मगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, आप कह सकते हैं कि भाई आप कुछ कीजिए जब आपको इतना लग रहा है तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सरकार के आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसे ही हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है। अगर इसके बारे में न्यायालय कोई कानून बनाएगी तो डेफिनेटली वो न्यायिक सक्रियता हो जाएगी, वो संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करना होगा। इसे ही सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि हम सरकार के आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते, हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं। देखिए, अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी व्यवस्था दी है, और वो ये है कि सभी राज्यों को ये निर्देश जारी किया है कि जिन भी सांसदों या विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आप उन्हें बिना वहां के हाई कोर्ट की अनुमति के वापस नहीं लेंगे। क्योंकि यह भी एक राजनीति होती है कि सरकार बदली और उसने फिर वहां जो उनके अपनी पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन्हें वापस ले लेंगे। आप वापस लीजिए, लेकिन हाई कोर्ट की अनुमति से, बकायदे हाई कोर्ट में आप अपील कीजिए, हाई कोर्ट फिर जैसा कहेगी वैसा होगा, तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिसकी चर्चा मैं अभी यहां समय की कमी के कारण नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए ये निर्देश जरूर है कि आप ये जो निर्देश हैं इन्हें आप नोट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। यदि संभव हो सका तो मैं फिर आगे कभी इस पर बात करूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो खासकर 127वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। आज वैसे बुधवार था और आज हमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में कुछ बातें करनी थी, उस पर हम लोग कल बातें कर लेंगे अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं आई तो, लेकिन चूंकि आज यह महत्वपूर्ण घटना थी तो उसे मैंने अभी रिप्लेस कर दिया है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा आज, संसद के एक सदन ने पारित कर दिया है, हो जाएगा। अब आप देखिए कि यह बेसिकली क्या है। पहली बात तो यह है कि इसका जो संबंध है इस विधेयक का, केवल इस बात से है कि अब जो राज्य हैं, सभी राज्य अपने अपने यहां की जो ओबीसी की जो लिस्ट होती है वो तैयार कर सकेंगे, यानी कि अब सभी राज्यों को इस संशोधन के जरिए यह अधिकार मिल गया है कि वे देखें कि उनके यहां कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जिसे वे पिछड़े वर्ग का मान रही है, अपने अपने ढंग से उसका निर्धारण करें। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले भी देखिए होता राज्यों के ही स्तर पर था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी और ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी की ही है। और दोस्तों हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था महाराष्ट्र में, जो मराठों को आरक्षण देने की जब बात आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को बकायदे एक डिसीजन देते हुए ये कहा था कि नहीं, ये जो OBC किस्में आएंगे इसकी पहचान करने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। जब उन्होंने ये बात कही कि केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, तो उन्होंने एक दो तथ्य दिए। वो तथ्य क्या थे? पहली बात तो यह है कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन आया था, 102वां, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। संवैधानिक दर्जा मिलना बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ बात की थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि जब ये एक राष्ट्रीय स्तर पर मिल गया है तो सीधी सी बात है कि अब इसी आयोग को ये अधिकार हो कि वो पहचाने कि कौन कौन पिछड़े वर्ग में आएगा। और यदि हम राज्यों को भी ये शक्ति दे देते हैं तो सीधी सी बात है कि इस आयोग की शक्ति में हम कटौती कर रहे हैं। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि इस स्थिति को अब इस संविधान संशोधन के जरिए बदल दिया गया है और अब राज्य अपने अपने स्तर पर पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान कर सकेंगे। यह तो इसका बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई हुई। दोस्तों अब आप देखें कि इसमें और कौन से तथ्य निहित होते हैं जब आप इसकी समीक्षा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार की तारीफ की जानी चाहिए कि इस संशोधन के माध्यम से उसने अपने अधिकारों को कम किया है। अभी तक तो उसी के पास अधिकार थे, केंद्र के पास, कि हम बताएंगे कि कौन ओबीसी में है, लेकिन अब उसे राज्यों को दे दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह संविधान संशोधन हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा संघीय स्वरूप है, उसको मजबूती प्रदान करता है। देखिए राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपने अपने स्तर हैं, या सच ये है कि उन्हीं को ही ये अधिकार होना भी चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अब ये कहा जाने लगा है कि चूंकि राज्य अपने अपने स्तर पर इसकी पहचान करेंगे तो डेफिनेटली वहां अब आरक्षण की मांग एक नए रूप में हमारे सामने उभर कर आएगी। कहीं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा आरक्षण की मांग करेंगे, जबकि सीधे 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 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये जो कुल आरक्षण है 50% से अधिक नहीं हो सकता। तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि इसके माध्यम से अब फिर से राजनीति में जाति का प्रवेश हो गया है, आरक्षण की राजनीति का प्रवेश हो गया है, यह भी लोगों का कहना है। डेफिनेटली इसके ऊपर एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, हो सकता है कि कुछ आपको एडिटोरियल आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिले। दोस्तों उस समय मैं आपको ये सब प्रोवाइड करूंगा, तो जब भी आपको इसके बारे में कुछ पढ़ने जानने को मिलता है तो प्लीज़ आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वैशाली देवांगन सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, चंदन सिंह कुंवर उत्तराखंड से और श्रुति सुमन, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।